हरे कृष्णा। तो आज हम स्कंद 3 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 23 पढ़ रहे हैं। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, भगवान एक आसेदम अग्र आत्मात्मनाम विभु आत्मेच्छानुगतावात्मा नाना मत्युपलक्षणः। समस्त जीवों के स्वामी श्री भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वय रूप में विद्यमान थे। केवल उनकी इच्छा से ही ये सृष्टि संभव होती है और फिर सारी वस्तुएं फिर उनमें विलीन हो जाती है। इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है। यहाँ पर महर्षि श्रीमद् भागवत के 4 आदि श्लोकों के प्रयोजन की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। यद्यपि मायावाद निर्विशेषवाद के अनुयायियों की श्रीमद् भागवतम तक पैठ नहीं है, किंतु कभी कभी वे उनके इसके 4 आदि श्लोकों के खींचतान करके काल्पनिक व्याख्या करते हैं। किंतु हमें श्री मैत्रेय मुनि द्वारा यहाँ पर दी गई वास्तविक व्याख्या को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इससे उद्धव के साथ प्रत्यक्ष श्री भगवान के मुख से सुना था। इन 4 आदि श्लोकों की प्रथम पंक्ति है, अहम एवासम अएवाग्रे। मायावादी इस अहम शब्द को ऐसी गलत व्याख्या करते हैं जिसे व्याख्याकार के व्यतिरिक्त और कोई समझ नहीं सकता है। यहाँ पर अहम की व्याख्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अर्थ में की गई है, व्यष्टि जीवों के अर्थ में नहीं। सृष्टि के पूर्व केवल भगवान थे, तब कोई भी पुरुष अवतार नहीं थे, जीव तो थे ही नहीं, न भौतिक शक्ति थी जिससे व्यक्त सृष्टि प्रभावित होती है। तब सारे पुरुष अवतार तथा परम भगवान की सारी विभिन्न शक्तियाँ एकमात्र उन्हीं में ही समाहित थी। यहाँ पर श्री भगवान को अन्य समस्त जीवों का स्वामी कहा गया है। वे सूर्य गोलक के तुल्य हैं, सारे जीव सूर्य की किरणों के अणु के तुल्य हैं। सृष्टि के पूर्व श्री भगवान के इसी अस्तित्व की पुष्टि शास्त्रों द्वारा श्रुतियों द्वारा की गई है। वासुदेवो वा इदम अग्र आसीत न ब्रह्मा न च शंकरः, एको वै नारायण आसिन्न ब्रह्मा नेशनाः। चूँकि प्रत्येक वस्तु जिसका अस्तित्व है वो भगवान से ही निर्माण है, अतः वे सदैव अकेले अद्वय रूप में विद्यमान रहते हैं। वे इस तरह विद्यमान रहते हैं क्योंकि वे सर्वसंपूर्ण तथा सर्वशक्तिमान है। उनके अतिरिक्त हर वस्तु, यहाँ तक कि उनके स्वांश विष्णु तत्व भी उनके अंश हैं। सृष्टि के पूर्व न तो कारण अर्णवशायी विष्णु थे, न गर्भोदकशायी विष्णु थे, न क्षीरोदकशायी विष्णु थे, और न ही ब्रह्मा और न ही शंकर थे। विष्णु के पूर्ण विस्तार तथा ब्रह्मा इत्यादि सारे जीव भिन्न अंश है। विष्णु के पूर्ण विस्तार तथा ब्रह्मा इत्यादि सारे जीव विभिन्न अंश हैं। यद्यपि आध्यात्मिक जगत श्री भगवान के साथ था, किंतु भौतिक जगत उनमें सुषुप्त था। इसका अर्थ क्या होता है? सुषुप्त यानी उनके अंदर गुप्त रूप में समाहित था। सुषुप्ति को कहा गया है कि एक वो निद्रावस्था है गुप्त रूप में, तो सारा विश्व जो है उनके अंदर समाया हुआ है सुषुप्त। केवल उनकी इच्छा से ही भौतिक विश्व बनता है और बिगड़ता है। वैकुंठ लोक की विविधता श्री भगवान के एकाकार में है। जिस तरह सैनिकों की विविधता राजा से ही तदाकार होती है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9.7 में बताया गया है, भौतिक सृष्टि कुछ अंतराल के बाद भगवान के इच्छा से ही होती रहती है और प्रलय और सृष्टि कुछ अंतराल के बीच की अवधियों में जीव तथा भौतिक शक्ति उनमें सुषुप्त रहते हैं। कुछ समझ में आया क्या? इतना भयंकर हिंदी दिया है, क्या समझेगा? तो इसलिए मराठी में जो अनुवाद किया है ना रोनी कुमार प्रभु श्यामानंद प्रभु जी ने, बहुत ही सुंदर और सरल, समझने के लिए आसान। ये जो है ना ये पांडित्यपूर्ण अनुवाद है, तो पंडित तो हम लोग है ही नहीं, समझ में कैसे आएगा। मैं आपको समझाता हूँ, भगवान की दया से हमने यद्धि का अभ्यास किया है कुछ समय के लिए, इसलिए थोड़ा सा ये समझ में आता है। जैसे वैकुंठ लोक की विविधता श्री भगवान से एकाकार है, मतलब क्या, यानी भगवान जो है उन्हीं की तरह वैकुंठ लोक है, एकाकार यानी उनके जैसा ही है, और तदाकार का मतलब भी वही उनके जैसा ही है, तद आकार उनके जैसा। भगवद गीता में क्या बताया है कि भौतिक सृष्टि कुछ अंतराल के बाद, अंतराल नहीं कुछ समय के बाद, कुछ कुछ समय के बाद उसका भगवान की इच्छा से निर्माण होता है, फिर क्या होता है उसका सृष्टि का मतलब भी यही है, निर्माण करना, सृष्टि होना यानी सृजन यानी निर्माण करना, कुछ अंतर के बाद में फिर उसका प्रलय होता है यानी नाश होता है, और बीच की अवधि में कभी अभी नाश हो गया है और सृष्टि निर्माण अभी हुआ नहीं है, तो बीच के अंतर में हम लोग सब कहाँ रहते हैं, तो हम लोग सब भगवान के अंदर सुषुप्त यानी गुप्त रूप में सूक्ष्म रूप में रहते हैं। और भी थोड़ा सा देखो आगे लिखा था, वे सदैव अकेले अद्वय रूप में विद्यमान रहते हैं। अद्वय का मतलब क्या है, एक, अद्वय दो नहीं है वो एक ही है, तो सदैव जो है प्रत्येक वस्तु जिसका अस्तित्व है वो भगवान से उद्भूत यानी निर्माण होता है, अतः वे सदैव अकेले अद्वय रूप में विद्यमान रहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान किसी भी समय पर रहते ही है, और भगवान पर कोई चीज़, भगवान सब चीज़ के नियंता है, सब चीज़ उन पर निर्भर रहती है, लेकिन वो फिर भी उनसे अलग रहते हैं, ये इसमें बताया। अद्वय का अर्थ यह है कि सब चीज़ उनसे निर्माण हो रहा है लेकिन फिर भी वो इंडिपेंडेंट है, जैसे कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। इसका सार अर्थ क्या है, भगवान पूर्ण है, उनमें जो निकलता है वो भी पूर्ण है, लेकिन पूर्ण निकलने के बाद भी वो अपूर्ण नहीं होते हैं, जो निकला हुआ है वो पूर्ण रहता है, और निकले जिनकी जिनसे निकला है वो भी भगवान पूर्ण रहते हैं। ऐसे अगर 10 पूर्ण भगवान से निकले तो 10 जो निकले हैं वो भी पूर्ण रहेंगे, और जिनसे निकले हैं वो भी पूर्ण ही रहेंगे, वो अपूर्ण नहीं होंगे। अगर हमने कुर्ता उतार लिया तो हम कुर्ताहीन हो जाएंगे, दूसरा कुर्ता पहनना पड़ेगा, और हमारा कुर्ता कोई और पहन लेगा तो वो पूर्ण हो जाएगा, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, भगवान ने कुर्ता पहना है आपको दिया तो वो कुर्ता वही रहेगा, आपके ऊपर भी कुर्ता आ जाएगा। सिंपल भाषा में समझने का अर्थ यह है। और आगे भी थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेट बताया था, अहम एवासम एवाग्रे, हाँ मायावादी लोग इसको शक्ति के रूप में कहते हैं, लेकिन वैष्णव जन जो है वो समझते हैं कि ये सब व्यक्ति है, शक्ति व्यक्ति का निर्माण है, शक्ति के द्वारा व्यक्ति निर्माण नहीं होता है, शक्ति के द्वारा शक्तिमान का निर्माण नहीं होता है, शक्तिमान से शक्ति निर्माण होती है, और बाकी जो तत्वज्ञान है मायावादी लोगों का वो कहते हैं कि शक्ति सबसे प्रधान है और उनमें से शक्तिमान का निर्माण होता है, और शक्ति रहती है शक्तिमान चला जाता है, कभी कभी शक्ति शक्तिमान के रूप में आती है और कभी कभी शक्तिमान उनके अंदर विलीन हो जाता है। तो ऐसा सब क्यों है, जब ये सच नहीं है तो ऐसा सब ये सिद्धांत कहाँ से आया है। इसका ना एक ही कारण है, क्योंकि भगवान से लोग विद्रोह करते हैं। अच्छा विद्रोह करते तो क्यों करते हैं, क्योंकि ना मुझे ना मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं चाहिए। आप थोड़ा सोच के देखो, अपने बारे में सोच के देखो, जहाँ तक हो सके मुझे लगता है कि मैं बॉस होना चाहिए, घर पे हो या मंदिर में हो ऑफिस में हो, मैं अधिकारी होना चाहिए, और मेरे ऊपर कोई आ गया तो वो कितना भी मेरा पूजनीय क्यों ना हो, अगर वो मेरे ऊपर आता है तो मुझे उससे विरोध होना शुरू हो जाता है। ये मैंने कई बार अनुभव किया है मेरे विषय में। अगर मेरे गुरु महाराज जो मेरे लिए इतने वंदनीय पूजनीय है अगर वो मेरे काम की जगह पर बॉस के रूप में आ गए रिपोर्ट लेने के लिए, तो मैं भी उनसे 36 का आंकड़ा हो जाएगा मेरा। क्योंकि अपने ऊपर कोई भी वंदनीय पूजनीय व्यक्ति आ गया जो आपको पूछेगा, ए तुमने क्यों नहीं किया, कब करने वाले हो, फिर दंड दूंगा आपको, तो वही व्यक्ति आपको अच्छा लगता नहीं है। आपको सवाल नहीं पूछना चाहिए, नोबडी शुड क्वेश्चन यू। इसीलिए अगर उस भगवान को ही हटाया जाए तो सब इजी हो जाता ना। सब शक्ति 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 आपसे ही बात करती है, बिजली थोड़ी आपसे बात करती है, शौक देती है लेकिन बात थोड़ी करती है। तो हमें ऊपर कोई व्यक्ति बॉस नहीं चाहिए, इसलिए मायावाद का निर्माण हुआ है। और ये मायावाद हम सबके अंदर भी है। हम कितने भी वैष्णव बनकर आए हैं फिर भी हमको लगता है कि ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, पूछने वाला कोई होना नहीं चाहिए, जो मैं करूं वही सबसे बड़ा है, वही सबसे श्रेष्ठ है और वही होना चाहिए। और हर एक व्यक्ति को यही लगता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है। अगर आपको ही लगता है तो अच्छा है कि आप बॉस बन सकते हो, लेकिन हर एक व्यक्ति को लगता है कि मैं बॉस बनना चाहिए। और सृष्टि का नियम है कि सेवक बन के रहोगे तो संतुष्ट रहोगे, ये सृष्टि का नियम है। क्योंकि कितना भी कोई भी बॉस बनेगा, एक आंधी आएगी, सब लोग खत्म हो जाएंगे, वॉर हो जाएगा, वॉर, आपने जीवन भर जितना कमाया है खत्म हो जाएगा, सब आप छोड़ के भागेंगे। हाँ, वो जो कपड़ा उठाया उसको लेके भागेंगे, बस उसके आगे क्या कहें आपको, ये सत्य है। लेकिन भूकंप कभी कभी होता है ना, रोज थोड़ी होता है, आपको ये अनुभूति दिलाने के लिए। थिंक अबाउट इट, ये सब सच्चाई है जीवन की। अभी एक भूकंप हुआ था 2001 में, उसके बाद भूकंप हुआ 2015 में नेपाल में, अभी कल परसों वापस 6.4 का भूकंप आया है। ये रोज नहीं होता है। वो मुझे विचार आ रहा था कि पृथ्वी पर इतना आतंक हो रहा है, दो जगह पर वॉर हो रहे हैं, वहाँ पर भूकंप क्यों नहीं हो रहा है, इतना पृथ्वी पर अपराध हो रहा है, लेकिन तीसरी जगह पर कहीं भूकंप हो रहा है। लेकिन वो कभी कभी होता है, इसलिए आपको उस समय जो अनुभूति एक्सपीरियंस साक्षात्कार हुआ है वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है। कुछ देर लगेगा, अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो ऐसा भटक रहा हूँ कि कुछ मेरे हाथ में है ही नहीं, तो सेटल हो गया तो हाँ फिर मैं कुछ हूँ, मैं ही नियंता हूँ, हम ईश्वर हम अहम भोगी, ये सब मेरे लिए बनाया गया है, मैं ही मालिक हूँ, मैं नियंता हूँ, मैं सब कुछ मैं हूँ। ये हमको पसंद नहीं है कि कोई मेरे से ऊपर आ जाए, इसलिए सिद्धांत निकला, उसको ही हटा दो। फिर शक्ति, अभी दीवाल आपसे बात नहीं करती है, लेकिन मैं बनूंगा आपको आके, ये दीवाल हरे रंग का है उसको पीले रंग का बना दो, तो मैं आके बोल सकता हूँ, लेकिन दीवाल नहीं बोलेगी, अरे कितना दिन का हरा रंग रखा है, चेंज तो करो दिवाली में अभी। वो दीवाल नहीं बोलेगी आपको, व्यक्ति बोलेगा, तो व्यक्ति आपको अच्छा लगता नहीं है। अगर पति बॉस है तो वो पत्नी को अच्छा लगता नहीं है, अगर पत्नी बॉस है तो पति को अच्छा लगता नहीं है, अगर टीचर बॉस है तो विद्यार्थी को अच्छा लगता नहीं है। क्या माता जी, कितनी भी मधुर प्रेमी माया प्रेम करने वाली शिक्षिका होगी, लेकिन वो शिक्षिका अगर एग्जाम लेने वाली हो तो नहीं अच्छी लगती है, क्या करें। शिक्षिकाओं को मुख्याध्यापिका अच्छी लगती नहीं है, प्रिंसिपल, क्योंकि वो रिपोर्ट पूछता है। दूसरे स्कूल के मुख्याध्यापक का बहुत गौरव करेंगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो मुख्याध्यापक है उससे अच्छा भी होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा वो, क्योंकि ये हमारा भौतिक विश्व का स्वभाव है। जो देहधारी है ना, शरीर धारण करके बैठा है, वो सबका रोग यही है, सबको बॉस बनना है। और आध्यात्मिक जीवन जो है हमको एकदम उल्टी शिक्षा सिखाता है, आपको बॉस बनना है, आपको सेवक बनना है, वो भी साधारण सेवक नहीं बनना है, दास दास अनुदास बनना है, दासों का दास बनना है, पूरी अपनी जो सोच है उसको, एक बड़ी ठोकर है, सबसे बड़ी ठोकर है वो, हम लोग क्या नेचुरल सोच रहे हैं उसको पूरा अगेंस्ट ठोकर देके विचार बदलना है अपने को। दुख होगा आपको, अब लगे इधर मत जाओ, आपको उधर जाना है, आपको ऑलरेडी वहां जा रहे हैं, रुको उधर, अभी आप अच्छा लग रहा है उधर, नहीं टर्न, यू टर्न करके इधर आ जाओ, आपको यहाँ जाना है, कौन बोला आपको वहां जाने के लिए? इतना आपका मन में विपरीत विचार स्वीकार करना पड़ेगा। सब हम लोग जा रहे हैं स्वामी बनने के लिए, बताया जा रहा है रुको यहां पर, तो सेवक बनना है। वाट, जो सेवक नहीं बनना है, ये तो मालिक बनने के लिए आया था। कोई बात नहीं, अभी आपको पता चला मालिक बनने के प्रयास में कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दुख वो दुख, इतने कष्ट है उसमें, उसमें निकलना है तो आपको सेवक बनना पड़ेगा। इसलिए सब गुरु महाराज जितने आचार्य क्या बताते हैं कि सेवक की पदवी सर्वोच्च पदवी है इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। जो कोई भी भौतिक दुनिया में स्वीकार नहीं करना चाहता वो पद, इसलिए वो कहते दीक्षा देते हैं तो जो नाम आपका कुछ भी होगा, केशव दास, हाँ राधा रानी दासी हो सकता है, लेकिन उसमें राधा रानी और केशव इंपॉर्टेंट नहीं है, दास और दासी इंपॉर्टेंट है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो भगवान का एक नाम आपको दिया है, समर्पक होता है वो बहुत बार, लेकिन उसके आगे का जो पदवी है दास और दासी वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब तक हम दास और दासी के भाव में नहीं आएंगे तब तक हमें कभी भी सुख नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। आप कितनी भी कोशिश करो, कितना भी प्रयत्न करो, और ये भौतिक विश्व में भी सच्चाई है, ऑफिस में भी अगर सब लोग बॉस बनने का प्रयास करेंगे ऑफिस में केओस हो जाएगा पूरा, कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं, कोई प्रोडक्ट निकलेगा नहीं, कोई प्रॉफिट निकलेगा नहीं। और सब लोग अगर सहयोग के साथ में एक दूसरे का सेवा करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि सहयोग ये शब्द ऐसा है वो सेवा भाव के बिना सहयोग हो ही सकता नहीं। मैं आपके साथ मेरा अगर सेवा भाव नहीं है मैं आपसे क्यों सहयोग करूँ, मैं तो बॉस बनने के लिए आया हूँ, आपको सहयोग करना है, आपको मेरी सेवा करनी है, ये हमारा विचार का साई भाव है। तो इसलिए ये सब इसमें क्या इस श्लोक का सार संक्षेप में बताते हैं आपको कि सृष्टि के निर्माण के पहले एक व्यक्ति थे, वो है भगवान। सृष्टि के मध्य में भी बहुत सारा निर्माण होता है फिर भी वो रहते हैं, ये भी लिखा है ना इसके अंदर। और जब सृष्टि समाप्त होती है तो सब कुछ नष्ट होता है फिर भी वो एक बचते हैं, एको हम विजो नास्ति, और वो है भगवान। तो फिर हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोगों को निर्माण किया जाता है, भगवान ने एक बार हमको निर्माण किया है अपने अंग से, जो उनका सच्चिदानंद अस्तित्व है, उनका हमारा ऐसा बॉडी नहीं है, उनका पूरा अस्तित्व ही सच्चिदानंद है, दिव्य है। तो वो दिव्य अस्तित्व से उन्होंने हमको निर्माण किया है, और फिर हम शाश्वत हैं जैसे वे शाश्वत हैं, हम टेम्पररी नहीं हैं, वो भी शाश्वत है परमानेंट चिरंतन, और उनका निर्माण जो है वो हम भी चिरंतन और शाश्वत है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? लेकिन जब निर्माण होता है तो हमको उसमें से दो दो पार्ट हो जाते हैं, एक पार्ट बोलता है सलाम साहेब मामा हम आपके साथ हैं, तो वो गौलोक में रहते हैं वैकुंठ में रहते हैं, और जो कहते हैं नहीं नहीं हमको आपका आधिपत्य नहीं चाहिए, हमको अपना अपना स्वामी बनना है, चलो ठीक है आप नीचे चले जाओ। तो नीचे चले जाओ मतलब क्या? उनके लिए रहने की खाने की व्यवस्था चाहिए ना, हवा पानी सब चाहिए, सूर्य प्रकाश चंद्र प्रकाश। तो ये दुनिया का निर्माण का काम शुरू होता है, सृष्टि लीला शुरू होती है, उसमें भी बहुत डिटेल है। संक्षेप में कहा जाए तो एक व्यक्ति है कारण उदक शाही विष्णु, कारण अर्णव विष्णु, अर्णव का मतलब सागर, कारण का मतलब कॉज, जिसका कारण कौन है, वो कारण जो है वो जो जल है उसको कहते हैं कारण अर्णव जल, उसमें वो विष्णु विराजमान है। वो सांस लेते हैं तो उनके ये छिद्रों में से बीज रूप में सृष्टि निर्माण होती है, ब्रह्मांड बड़े होकर परिपक्व हो जाते हैं, फिर उसमें गर्भोदकशायी विष्णु आते हैं, फिर ब्रह्मा का जन्म होता है, फिर आगे की सृष्टि का निर्माण होता है। आगे क्या होता है, यहाँ तक भगवान खुद करते हैं, उसके आगे ब्रह्मा जी आके सेकेंडरी द्वियम द्वितीय निर्माण जो है वो करते हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, भगवान से 24 तत्व लेते हैं और हम सब लोगों का जो शरीर है उसको डिज़ाइन बनाते हैं उसका। देखो कितने लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोग अलग दिखते हैं, सब लोग अलग दिखते हैं, सबके कर्मों के सेट अलग है, तो सबका जन्म अलग अलग ठिकाने हुआ है, सब जगह अनुभव जीवन में अलग अलग है। आप एक ही घर में रहते हो लेकिन आपका दुख आपका सुख सब अलग अलग है। ये सबका जो इंजीनियरिंग है ना, वो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से 24 तत्व लेकर कर देते हैं और हमको छोड़ देते हैं बनाकर, फिर हम अपनी जिंदगी जीते हैं। कुछ समय के लिए रहते हैं, अपने कर्मों का भोग करते रहते हैं। यही शरीर जो है वो आज जैसा दिख रहा है वैसा कल नहीं दिखेगा, जैसा परसों भी दिखेगा नहीं, और वर्षों भी दिखा नहीं था वैसे आज दिख रहा है। तो ये चेंजिंग सिचुएशन कुछ समय रहेगी और फिर एक दिन समाप्त हो जाएगी। तो समाप्त हो जाएगी तो वो हम सब लोग वो महाविष्णु कारण अर्णव शाही विष्णु उसमें विलीन हो जाएंगे, और फिर वो जब सांस छोड़ेंगे तो हम फिर बाहर निकलेंगे और फिर हमारा शरीर प्राप्त होगा, फिर हम लोग अलग अलग ब्रह्मांड में जन्म लेंगे, फिर कुछ समय रहेंगे, फिर मरेंगे, फिर सृष्टि का एक दिन विनाश होगा। इसमें एक होता है मिनी प्रलय, एक होता है बड़ा प्रलय। मिनी प्रलय ब्रह्मा जी के हर एक दिन के बाद में होता है, और बड़ा प्रलय ब्रह्मा जी के 100 साल के लाइफ के बाद में होता है, जहाँ पर ब्रह्मा जी भी खत्म हो जाते हैं, उसको बड़ा प्रलय कहते हैं। वो ब्रह्मांड ही पूरा समाप्त हो जाता है, और बीच में ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तो कभी जल से, कभी अग्नि से, कभी वायु से, कभी किससे वो प्रलय होता है, और फिर वहीं पर सृष्टि निर्माण होती है। ऐसे ब्रह्मा जी के 100 साल तक हर दिन चलते रहता है, और हम लोग सब इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, उधर से इधर, कभी देवलोक में, कभी पृथ्वीलोक में, नरक लोक में, कभी इधर, कभी काले शरीर में, गोरे शरीर में, कभी लंबे आयु के शरीर में, कभी छोटे आयु के शरीर में, कभी पंछी, कभी प्राणी, कभी मनुष्य, कभी कुछ, कभी कुछ। और उसके बाद मनुष्य बनते हैं तो ज्ञान प्राप्त होता है, फिर समझता अरे गड़बड़ मामला है, सब गड़बड़ चल रहा है, क्या चल रहा है, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी पंछी, और सभी कुछ भी बनेंगे तो दुख तो है ही। जब मनुष्य बनेगा तो वो सारे पंछी बनना कितना अच्छा है, किसी को किधर से किधर उड़ता है वो, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई जैम नहीं, कुछ नहीं। आपको जब ट्रैफिक में जाम है तो क्या लगता है, अरे उड़ के जाऊँ क्या अभी सीधा स्ट्रेट, इधर तो है वो, उड़ूंगा तो सीधा पहुँच जाऊँगा 2 मिनट में, लेकिन 2 घंटा लगता है वहाँ से वहाँ, तब लगता है पंछी बन जाऊँ। समझो पंछी बन गए तो सोचते मनुष्य को नहीं बना, कितना कष्ट है, दिन रात भोजन ढूंढना है, दिन रात मादी को ढूंढना है, दिन रात सुरक्षा करनी है, दिन रात कुछ पता नहीं, दिन रात डर है, सब चीज़ कोई अटैक हो रहा है हमारे ऊपर। तो ना पंछी में सुख है, ना कुत्ते में सुख है, ना गाय बनने में सुख है, ना देवता बनने में सुख है, ना मनुष्य बनने में सुख है। तो विचारधारा शुरू होती है, क्या किया जाए, कि संत लोगों का संग होता है, सोचते इसमें निकला जाए एक ही बार, और फिर निकलने का मार्ग शुरू होता है, नहीं तो फिर गोल 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 घूमते रहते हैं। वो भी अपना साइकिल है भगवान का, निर्माण करना, मेंटेन करना, नष्ट करना, निर्माण करना, मेंटेन करना, नष्ट करना, उसमें हम लोग गोल 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 घूमते रहेंगे। अगर संतों का संग मिला तो गोल नहीं घूमेंगे, गोल से बाहर निकलेंगे, लेकिन वो बाहर निकलते ही तुरंत अपने जगह पर पहुँचने जाएंगे, वहाँ से बहुत लंबा डिस्टेंस है, उसमें मन हट गया तो वापस घुस सकते हैं गोल गोल में। अगर अच्छा सत्संग नहीं किया, अच्छी सेवा नहीं की उसमें भी, तो बाहर निकले थोड़ी देर के लिए, फिर वापस उसमें गोल गोल फंस जाएंगे, सख क्या है शोषित हो जाएंगे इसमें। बाहर निकले एक बार उसके आकर्षण से तो भी आगे का रास्ता भी काटना है बहुत। ये सच्चाई है हमारे जीवन की, इसी को समझना है अपने को, टिकाए रखना है अपने विचार को कि वापस जाना नहीं है। हम लोग टॉयलेट में कब जाते हैं, जब मल पेट में भरता है तो टॉयलेट में जाते हैं, और वहाँ पर कितना देर रहते हैं, जैसे हो गया बाहर, वहाँ पर बैठ के ऐसा चित्रपट निकालते रहते हैं क्या, दीवार पे पेंटिंग निकालते रहते हैं वहाँ पर बैठ के, या अगरबत्ती जलाते रहते हैं बार बार, काम करो बाहर निकलो, तो वो एक सुविधा है, लेकिन वो वहाँ पर परमानेंट रहने का इंतज़ाम नहीं है। परमानेंट घर पे बेडरूम में रहते हैं या घर में रहते हैं। वैसे हमको समझना चाहिए कि ये दुनिया उस प्रकार से ही है, डू योर बिजनेस एंड गेट आउट, इतना यहाँ पर काम है और जितना मजबूरी से रहना है बस दिल लगा के मत रहो, काम करो और निकलो। और ये काम करो और निकलो का जो विचार है वो बनाए रखो उसको बार बार। अरे अभी जत्रा आ गई, अरे जत्रे में तो कितना मजा आ रहा है, अरे अभी तो ये सेल लग रहा है दिवाली का, चलो कितना आनंद आ रहा है, उधर ग्राहक पेट लगी है, उधर ये लगा है, उधर वो लगा है, चलो सब लोग जाते हैं ढूंढते हैं सस्ता मिलेगा, साल भर के लिए मिलेगा। फिर भूल जाते हैं कि अरे हमको निकलना था यहाँ से, लेकिन हम इधर ही पड़े। इसलिए नियमित सत्संग की आवश्यकता है। तो इसका सार यही है कि फाइनली हमको पता होना चाहिए कि जो हमारे स्वामी है वो रहते ही है, आप इस तरफ से देखो या उस तरफ से देखो, अल्टीमेटली वही है श्री कृष्ण भगवान। जब उनके प्रति हमारा आकर्षण हो गया, आकर्षण तो है पहले से नेचुरल है क्योंकि हम उनके अंश हैं, लेकिन हम भूल चुके हैं, लेकिन याद आ गई एक बार तो उस याद को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, उस याद को कि हम उनके हैं और हमको उनके पास ही जाना है, उनको छोड़कर यहाँ वहाँ भटकना नहीं है, इस ज्ञान को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और वो अगर नहीं बनाए रख सकते हैं तो फिर दर दर की ठोकरें खानी है जिंदगी भर और जिंदगी के बाद जिंदगी। वो कैसे कहते हैं LIC, जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद भी। तो हमको यही कहना है, जिंदगी में भी दुख मिलेगा, जिंदगी के बाद में भी दुख मिलेगा, जन्म जन्मांतर तक दुख मिलते रहेगा अगर इस याद को हम बनाए रखेंगे नहीं तो। और कुछ चाहेंगे भी नहीं, फिर भी एक दिन अंत होगा। आपको लगेगा बढ़िया चल रहा है, जप कर रहा हूँ, भक्तों का संग कर रहा हूँ, प्रसाद खा रहा हूँ, दामोदर में सेवा कर रहा हूँ, आनंद आ रहा है बहुत, तो लगता है कि अच्छा चल रहा है, क्या है उसमें, कि बुरा क्या है, पैसा भी ठीक है, सुविधा भी अच्छी है, एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन उसमें भी एक दिन घाला पड़ेगा, अटैक होगा उसके पर, और वो आपका जो सुख की श्रृंखला है वो तोड़ दी जाएगी। फिर कहेगा कितना अच्छा सिचुएशन था, लेकिन समय उसको तोड़ देगा। कोई भी अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ समय के आघात से टूट जाती है, दुख में भी दुख है और सुख में भी दुख है, केवल बुद्धिमान व्यक्ति इसको समझ सकता है। हरे कृष्णा। अभी आप लोग प्रश्न पूछिए। प्रभुपाद जी का एक बहुत सुंदर विशेषता है, वो हर चीज़ को बड़े आसान करके बताते हैं। अनुवादक लोग गड़बड़ करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बहुत सिंपल लिखते हैं। आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको समझेगा, बहुत सिंपल है। कठिन से कठिन श्लोक का भी व्याख्या इतनी सुंदर करते हैं कि समझने में बिल्कुल आसान हो जाता है। संत लोगों का सहारा क्यों चाहिए, कि संत लोगों की विशेषता ही होती है ये। जैसे स्कूल में देखो अच्छे शिक्षक कौन होते हैं, कि जो कठिन कठिन विषय जो है वो इतना आसान कर देते हैं, यहाँ तक आसान करते हैं कि जिनको उस विषय में कठिन है इसलिए रुचि नहीं थी उनको भी विषय अच्छा लगने लगता है। हमारे स्कूल का अनुभव है कि टीचर अच्छी थी इसलिए उन्होंने सिखाया विषय हमको अभी भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो सिखा रही थी और वो सिखा रही थी इसलिए वो विषय हमको अभी भी मीठा लगता है और अभी भी इसमें लाइकिंग है, और कभी कभी करियर भी उसमें बना लेते हैं। जब तक वो टीचर नहीं थी तो विषय को हम हेट करते थे, उसे घृणा करते थे। जब वो टीचर आई, उसने वो विषय सिखाया, तो जिसमें घृणा थी उससे विषय से भी प्रेम हो गया और विषय में आगे करियर बन गया पूरा। तो एक अच्छे शिक्षक की जैसी आवश्यकता है वैसे ही एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है, जो जीवन के हर किचकट क्लेशदायी कष्टमय स्थितियों को आसान करके समझाता है। और फिर जो निरुत्साह रहता ना चलने के लिए, वो उत्साह में बदल जाता है चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अभी पूछिए। यस
हम रहे
आप अगर गोवर्धन की लीला पढ़ोगे ना भागवत में, गोवर्धन लीला, उसमें भगवान भी नंद बाबा से डिस्कस कर रहे हैं। वो उसको कहा गया है कर्म मीमांसा चर्चा। हाँ, उसमें ना स्वयं कृष्ण अपने पिताजी को बता रहे हैं कि पिताजी ये कर्म के मीमांसा में या चर्चा में मत पढ़ो आप। वो कह रहे हैं बहुत मुश्किल है, किसी के समझ में नहीं आएगा ये कर्म किस प्रकार से चलता है, इसका प्रोटोकॉल क्या है, इसका सिस्टम क्या है। अभी आपको आज आपको पेट में दुख रहा है तो वो कौन से कर्म का फल है ये कोई नहीं बता सकता। पेट का दुख का दर्द का इलाज करना है आपको, लेकिन मुझे आज पेट का दर्द सुबह सुबह क्यों हुआ, जब मैं बाहर जा रहा हूँ अमेरिका निकल रहा हूँ तो मेरे को पेट दर्द क्यों हुआ कोई नहीं जान सकता है। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, उनको पता है, लेकिन देवताओं को भी पता है गारंटी नहीं। उनको जितना नॉलेज दिया उतना ही पता है उनको, उसके आगे पता नहीं है। उनको बताया गया इसका कर्म को इतना फल दो बस, उसपे कहाँ से कहाँ आया कर्म वो और इस कर्म के लिए यही फल क्यों, ये किसी को कहने का अधिकार नहीं है। उसी तरह से हम सब लोग इसी वक्त क्यों जन्म लिया, वो तारा ऐसा था, वो ग्रह ऐसा था, नक्षत्र ये था, वो भरणी नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में, कृतिका में क्यों जन्म लिया हम लोग ने, वो अशुभ घटिका में क्यों जन्म लिया, राहु काल में क्यों जन्म लिया, या सुंदर पुनर्वसु में क्यों जन्म लिया, या आप लोगों हम लोग को, मुझे बहुत प्रश्न होता था पहले बचपन में कि मैं अमीर के घर में जन्म क्यों नहीं लिया इतने कष्ट वाले घर में जन्म क्यों लिया। सबको लगता है कि मैं तीन लोगों का जन्म अंबानी के घर में क्यों हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ, है ना। तो उसका उत्तर भी किसी के पास नहीं है, कौन से कर्म के वजह से हम कहाँ आए हैं। तो ये बहुत ही गहन विषय है। तो इसलिए शास्त्र में लिखा गया है कि समझो आप बोट में से समुद्र में गिर गए हो समझो और डूब रहे हो, तो पहला कर्तव्य आपका क्या है, पहले बोट में चढ़ो, डोरी फेंक रहा है, टायर फेंक रहा है, पकड़ो और चढ़ो बोट में। नहीं तो मूर्ख आदमी क्या करता है, पहले बताओ मैं गिरा कैसे, बाद में चढ़ूंगा, तब तक डूब जाएगा वो, आंसर समझते समझते वो डूब जाएगा। तो इस तरह से हमको क्या बताया है कि अभी मुझे कौन से कर्म से ये दुख हो रहा है, उसके बदले में इसका कैसे इलाज किया जाए वो देखो। बाद में कभी समझ में आया तो अच्छा है, नहीं समझा तो भी आपको पेट में दुख रहा है तो उसका गोली लो, डॉक्टर के पास जाओ दवा ले लो, पेट क्यों दुख रहा है, किस कर्म से दुख रहा है, तो ये उसका फिलॉसफी हो गया। रही बात कल के इवेंट की, जीव जो है ना उसका एक ये जन्म का हिसाब नहीं है, बहुत जन्मों का उसका हिसाब किताब। एक जन्म में सुन अभी आप, ये जन्म है आपका, ये जन्म का अंत होगा ना तो जो कर्म का स्टॉक बनेगा जिसको भगवान को और देवताओं को फल देना है, उसमें बहुत कैटेगरी होती है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कुत्ते के शरीर में ही उसका फल भोग सकते हैं आप, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो देवताओं के शरीर में ही उसका सुख भोग सकते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं, एक ही जन्म के बोल रहा हूँ मैं, दस जन्म के नहीं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं वो नरक में जाकर ही उसका आपको भोग होगा, कुछ होगा ऐसे कि राक्षस बनने के बाद ही उसका भोग मिलेगा आपको, कुछ के लिए आपको कीटक बनना पड़ेगा। ऐसे एक जन्म में व्यक्ति बहुत जन्मों का एक साथ हिसाब कर देता है, फिर वो जन्म का फल भोगने के लिए वो कई जन्म में आता है। उसमें भगवान तय करते हैं चलो पहले कुत्ता बना दो, फिर अगले बार देवता बना दो, फिर आदमी नरक में डाल दो, एक जन्म का हिसाब करने के लिए इतना सा समय लगता है। फिर वो जो बीच का जन्म है अगर कीटक का है कुत्ते का है तो नया कर्म पैदा नहीं होता है, लेकिन बीच में मनुष्य का जन्म आ गया तो फिर वापस नया कर्म का हिसाब किताब, फिर वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ये जन्म का भी बाकी है, उसका भी बाकी है, उसका भी बाकी है। तो ये सारी जर्नी में इसका नियंत्रण भगवान करते हैं कि इसके लिए क्या बाकी है और कितना देना है। जैसे मेरी भी बेटी थी वो 20 साल में चली गई, उसका उतना बाकी था, वो अपना काम पूरा करने के लिए माता पिता के घर में आई थी अपना काम पूरा करने के लिए। तो अभी वो कहाँ गई होगी, सीधे भगवान के पास गई है क्या, कि बीच में कहीं और भगवान की लीला कहाँ चल रही है वहाँ गई होगी, या दोबारा एक बार मनुष्य बन के आई होगी, ये हमको पता नहीं कर सकता, वी कैन नॉट टेल एनीथिंग। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत्यकले, और ये इसका एक वही गाइडलाइन है कि जो भी विचार सोच भावना चेतना उस व्यक्ति की जाने के समय होगी वही उसको अगली स्थिति में पहुंचाएगी। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेव, अगर वो जीव जाते समय मेरा विचार करेगा तो मैं मेरे पास पहुंच जाएगा, ये भी गाइडलाइन दिया है। अभी हम और आप सबके हाथ में है ये किसके बारे में सोचना है, हाय मेरा पैसा ऐसा सर के मरेगा तो फिर पैसे के ही पास में जन्म लेगा और उसी में लग जाएगा, और हाय मेरी बीवी सोचेगा तो वो बीवी के पास ही वापस आएगा, किसी ना किसी रूप में आएगा। ऐसे हाय करके आगे एक करोड़ चीज़ें भी हो सकती है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। पता नहीं हमारे आपके मन में अभी क्या चल रहा है और मौत के समय क्या चलेगा उसका कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या? आप बताओ, आपके मन में अभी गारंटी है कि आप क्या सोचोगे मरते समय? मेरे मन में गारंटी है उस समय क्या स्थिति होगी? भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आप दया करो भाई आपकी याद आए, लेकिन उस समय क्या स्थिति होगी, क्या घटनाएं घट रही होगी, कैसा कैसे हो गया होगा और क्या हम सोचेंगे, वो तो परीक्षा है हमारी। जैसे आपके स्कूल में बच्चे लोग कैसे ना, सब पढ़ाई कर रहे हैं, 5 लोग वो ब्राइट है, लेकिन कौन फर्स्ट आएगा वो उस समय क्या लिखेगा एग्जाम में वो तय करेगा। सब लोग अच्छे पढ़े एकदम इक्वल है, लेकिन उस समय पे रात को कौन सोया था, रात को किसने उल्टी की थी, रात को किसी को बुखार आया था, और क्या एग्जाम में फाइनल लिखेगा उसके ऊपर आपके अंक मिलेंगे, उसमें से एक आदमी फर्स्ट आएगा। ये सब निश्चित भी है और अनिश्चित भी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जो चाहिए उस तरफ जा रहे हैं, ये प्रयास करेंगे। हमको रास्ता बता दिया है, गाइडलाइन दे दिया है ना, देखो यहाँ से इधर जाओ स्टेशन जाओ, फिर वो देवगिरी आएगी, रात को 8:30 को पकड़ो, फिर थाना में उतरोगे सुबह, वहाँ से टैक्सी करो घर पहुँच जाओ, ये आपको गाइडलाइन दिया है। अभी बीच में रास्ते में अगर तूफान आ गया बीच में तो रास्ता ब्लॉक हो गया, तो आपको दूसरा रास्ता भी पता होना चाहिए। ट्रेन में कुछ हो गया तो भी लेट हो जाएगा, तो फिर ऑफिस में जाना है 10 बज गए तो भी ट्रेन पहुंचानी है, तो आगे का रास्ता भी आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, हाफ डे लेट करेंगे भी जाएंगे। तो ये सब अनिश्चित है, लेकिन निश्चित क्या है, रास्ता निश्चित है, लक्ष्य निश्चित है, बीच में क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अगर जिसका निश्चय है वो किसी भी तरह से अपना काम की जगह पर पहुंच जाएगा। तो इनके विषय में हाँ, उनके गति के लिए कर सकते हैं जो अभी कल हमने क्या किया, अखंड वहाँ कीर्तन किया, उससे क्या किया, यमदूत वहाँ घुस न सकता, घुस नहीं सकेगा। दूर दूर तक जहाँ तक ध्वनि जा रही है हरे कृष्ण महामंत्र की, उसके परिघ में भी घुस नहीं सकता है यमदूत। फिर वो जो जीव अभी जस्ट शरीर से निकला है अभी अभी, तो उधर ही रहता है वो, क्योंकि वो शरीर से आ सकती है ना, उसकी शरीर से आ सकती है तो उधर ही मंडराते रहता है वो, तो वो आत्मा भी सुन सकती है। ये मत समझना कि शरीर से ही कान से ही सुनना है आपको, आत्मा सुनती है, कान नहीं सुनता है, कान तो यंत्र है, कान को काट के रखो वो सुनेगा क्या? कान यहाँ लगा हुआ है तो कौन सुन रहा है, कान सुन रहा है क्या? आप सुन रहे हो, यस आप ही सुन रहे हो। आँख देख रही है कि आप देख रहे हो, आँख के माध्यम से आप देख रहे हो। चश्मा देख रहा है क्या? चश्मा तो मुझे दिखाने के लिए मदद कर रहा है, चश्मे के माध्यम से मैं देख रहा हूँ, अभी क्लियर नहीं है, ये नंबर निकाल के चश्मा बनाया है ताकि मैं देख सकूँ क्लियरली आपको। तो जो जो भी हम करते हैं उससे निश्चित गति बदलेगी। भाग्य कैसा है देखो, समझो कोई व्यक्ति जा रहा है यहाँ से काम पे, रास्ते पे एक्सीडेंट में मर गया, तो उसको कीर्तन मिलेगा क्या? क्या मिलेगा उसको? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये देखो कल का जो है वो शुरू से लेके भक्त लोग ही साथ में हैं, सब लोग कांस्टेंट जप कर रहे हैं उसके बाजू में, तो भले कष्टमय स्थिति है लेकिन वो भगवान के नाम का जप से उसकी गति बदल रही है। अगर वो रोड पे जाती है और कहीं एक्सीडेंट में चली जाती है अकेले तो गति अलग होती है, जिस प्रकार से हुआ है उससे गति अलग हो जाती है। भक्त लोग अपनी प्रार्थना से और अपनी क्रिया से जीव की गति बदल सकते हैं। वो दावा नहीं करते कि हम बदलेंगे, लेकिन वो कृपा पर भरोसा करते हैं कि जब हम नाम पुकारेंगे तो जिसका नाम है वो व्यक्ति कृपा करेंगे और दिशा बदलेंगे उसकी। इसलिए अंतिम क्षण तक देखा आपने तो उधर भी भगवद गीता के श्लोक गाए जा रहे थे, यहाँ पर माताएं हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे थे। क्या कर रहे हैं? भगवान इसको आपके चरणों की ओर गति दे दो, और भगवान देखेंगे कितनी तीव्र प्रार्थना हो रही है उतना उसका फल उस जीव को देंगे। उस जीव की महानता ही है, वो इतने लोगों को इकट्ठा करके प्रार्थना करवा रहा है अपने लिए, वो भी हृदय से, कोई ऐसा नाटक करने के लिए वहाँ पे आया नहीं, सब लोग हृदय से बोल रहे हैं इस जीव को आप गति दे दो। बाकी डायरेक्टली भगवान के धाम पहुँच गए हैं कि बीच में किसी और योनि में जाएंगे, वो सारा हिसाब किताब तो उनके पास है, हमारे पास क्या है, शुभेच्छा है, कि तुरंत भगवान के चरणों में स्थान मिले। हमने भी प्रार्थना वही की है, लेकिन हमारी सारी प्रार्थना कहीं वेस्ट नहीं हो रही है। भले वो डायरेक्ट भगवान के चरणों में नहीं जा रही है, लेकिन हमारी प्रार्थना रजिस्टर्ड है उधर, इनके लिए ये प्रार्थना हुई है, आज नहीं तो कल उसका परिणाम मिलेगा उसको। क्योंकि जैसे हम लोग करते हैं ना बैंक में इन्वेस्टमेंट, तो रहता है उधर ही, वो मल्टीप्लाई होते ही उधर रहता है, और एक समय पर उसका मैच्योर होता है वो, और मिल जाता है आपको उसका फ्रूट, है ना। एवरी एक साल के बाद में आपको 32,000 मिलेगा 5,00,000 के ऊपर, ये हिसाब किताब। इसलिए हमको कभी भी ना अपना जो नियत कर्तव्य है वो करते ही रहना चाहिए। आपको अच्छा लग रहा नहीं है कि बेटी 17 साल की बेटी क्यों गुजरना चाहिए, ऐसा क्यों होना हो रहा है, लेकिन हो रहा है तो उस समय आपका हमारा कर्तव्य क्या है वो हमको करते ही रहना चाहिए। दुख में और सुख में कर्तव्य को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि फाइनली अगर आप दुख में अपना कर्तव्य को दुख के वजह से भूल गए तो आगे के वक्त का नुकसान हुआ कि नहीं। आप इतनी भावना में आ गए, आपने वो प्रार्थना करना ही भूल गए, रोते रह गए, क्या रोने का फायदा है, नो यूज़। आपने रोने को काबू में रखा, अगर भगवान का नाम लिया तो उस व्यक्ति के लिए लाभ है उसका। साधु में और सामान्य व्यक्ति में यही अंतर है। साधु को भी दुख होता है, ये मत समझना कि साधु एकदम सा निरीच्छ और भावना शून्य और रुक्ष ऐसा है, पत्थर जैसा है, ऐसा नहीं है। उसको भी भावना होती है, लेकिन वो जानता है कि भावनाओं को कहाँ रोके और कर्तव्य को कैसे ना रोके। उसको भी आंसू आते हैं, गुरु जी भी रोते हैं, लेकिन फिर भी अपना जो कर्तव्य उस पर प्रति है उसको नहीं भूलते। अपने दुख को बाजू में रख के अपने कर्तव्य को पहले करते हैं, फिर दुख को अनुभव करते हैं, ऐसा है। यस, माइक है क्या, माइक ये तो माइक, सब कुछ कर्म पे डिपेंड है। यस, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चौक लगाते रहो और फवारा मारते रहो, ऐसा नहीं बोल रहा आपको मैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे गुरुजी बताते हैं कि स्वच्छता पहले रखो, जिसके वजह से ये सब आ रहे हैं। कॉकरोच क्यों आते हैं, क्योंकि कचरा है, खाने की चीज़ें रखी हुई है, ऐसी खुली रखी है, ठीक से रखी नहीं है, तो वो पहले करो। लेकिन फिर भी उसके बाद में भी आते हैं, ऐसा नहीं कि उसके बाद में नहीं आते। अरे आप भोग लगाते हैं ना, कभी कभी मंदिर में भोग लगाने का पर्दा बंद कर, चूहा आता है उसके अंदर, पता नहीं कहाँ से आता है, कितना भी इलाज करो। आप जाके सोच रहे हो भगवान खा रहे हैं, इसको टाइम दो खाने के लिए, पर्दा बंद करो, अच्छा चूहा घूमते रहता है उसके ऊपर फर्स्ट क्लास। तो ये उसका हम इलाज समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार करते रहते हैं, ओके। लेकिन हमारे पास एक उपाय है जो हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। आपने प्रश्न क्या पूछा था बताइए, उस बारे में बताइए।
हत्या जो हो रही है,
नहीं नहीं उसके बाद में एंड में क्या बोला आपने कि हमारा फिर क्या होगा।
हाँ,
तो पदम पदम यत विपदम न तेषाम, हर कदम पर इस जीवन में, इस भौतिक जगत में पाप है, कष्ट है, पीड़ा है, और क्या कहते हैं, संकट है। हर कदम पे कोई भी ऐसा कदम नहीं है जहाँ पर संकट नहीं है। जैसे आपने सांस लिया तो सांस में भी जंतु मरते हैं, पता है आपको। आप एंटीबायोटिक खाते तो बैक्टीरिया मरते कि नहीं मरते। आप एंटीबायोटिक नहीं भी खाएंगे, आपके शरीर में ऐसी यंत्रणा है कि बैक्टीरिया को मारा जाता है, आपके शरीर में प्रतिकार शक्ति भी है ना, मोनोसाइट्स, फैगोसाइट्स, एंटीबॉडीज सब है हमारे शरीर में। हमारा भी वो है, वो क्या सुरक्षा पद्धति है शरीर की, वो जब थोड़ा फेल हो जाती है तो हम बाहर से फोर्स भेजते हैं एंटीबायोटिक का, और वो रोग से मुक्त होना चाहते हैं। पानी उबालते हैं ना पीने के लिए तो कितने जंतु मरते हैं। रोज खाना बनाते हैं आप, कितना जंतुओं को, बैक्टीरिया, वायरस को मार के फिर भगवान को भोग लगाते हो। तो क्या करें? खाना पीना ही बंद करें, सांस लेना बंद करें, पानी उबलना बंद करें, स्नान करते हैं तो कितने जीव जंतु मरते हैं पता है आपको? कहाँ कहाँ जीव जंतु छुपे रहते हैं, उसको हम सब लोग साबुन से, इससे उससे, गर्म पानी से निकाल लेते हैं पूरा। एक बार सर धोते हैं हमारा, हाँ, अब्जावधि बाल होते हैं, हर एक अब्जावधि बाल में उतने ही अब्जावधि जंतु होते हैं, वो सबको एक बार शैम्पू वैम्पू लगा के चकाचक कर देते हैं। तो फिर क्या करें, जिए कि ना जिए? बाल धोना बंद करें, ब्रश करना बंद करें, ब्रश करने से भी कितने जंतु सुबह हम लोग ख़त्म कर देते हैं, गार्गल करते हैं तो कितने जंतु खत्म करते हैं, हल्दी का दूध पीते तो कितने जंतु मर जाते हैं। तो इसलिए पदम पदम यत विपदम नतेषाम, जब तक शरीर है तब तक ये सब होते रहेगा। ये जानते हुए हमको इन सबसे बाहर निकलने का जो मार्ग है वो बड़े दिल के साथ करना चाहिए, और उसके बाद जो जरूरी है कम से कम मात्रा में आपको करना है। अगर वो चूहा भगवान के प्लेट पर घूम रहा है तो आपको उसका इलाज करना ही पड़ेगा। आप दिल से चाहते हुए, आपको मजा आ रहा है इसलिए गोली नहीं मार रहे उसको, कुछ कारण है उसके पीछे। ऐसा बच्चा अपना ऐसा एक बैठा हुआ है तो देख रहा, अरे बहुत चींटियों की लाइन जा रही है, चलो सुई लेके जाता है और सबको ऐसा प्रेम से टोच रहा है उसको। वो खेल खेल में नहीं कर रहे हम लोग, हम लोग जरूरत के लिए कर रहे हैं, मजा आ रहा है ऐसा नहीं कर रहे। वो मुर्गरारे को कैसा मजा आ रहा था, बहुत आधा आधा मार के छोड़ने का मजा आ रहा था, वो पाप है। वो मजा के लिए अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, लेकिन आप जरूरत के लिए कर रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो। या तो आप मर जाओ या तो दवा खा के जिंदा रहो। तो आप जिंदा रहेंगे तो भगवान का नाम लेंगे, और मर जाएंगे तो फिर वापस आना पड़ेगा। इसलिए मिनिमम हिंसा ओनली जरूरत है इसलिए हो रहा है वो, और बाकी आपको करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो सारे कर्मों को नाश करने वाला जो चीज़ है, सर्वधर्मम परित्यज्य, वो जो भगवान की भक्ति है वो हमको करना है। भगवान ने क्या कहा है कि जब आप मेरा नाम लोगे सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। फिर अभी तो बहुत बार नाम ले चुके हैं, लेकिन नाम लेने के बाद भी कर्म हो रहे हैं ना, उसका क्या? तो हर सुबह जैसे स्नान करते हैं वैसे भगवान का नाम लेकर उसको भी स्वच्छ कर रहे हैं। तो जीवन के अंत तक लेंगे, आखिरी मोमेंट तक लेंगे, तो जब मरने का समय आएगा तभी भी नाम लेंगे, ये याद करेंगे, तो तब तक के सारे कर्म साफ हो जाएंगे और भक्ति आगे आएगी और भगवान उसको लेके आगे बढ़ाएंगे। हमारा संघर्ष क्या है फाइनली? आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, हाँ, सततम कीर्तयन तो माम यतंतश्च दृढ़व्रतः, रोज के रोज कर रहे हैं, तो आखिरी मोमेंट में भी करने का हमारा प्लान है। ऐसा नहीं कि अभी 15 साल हो गए बस, अभी इसके आगे तो पहले का स्टॉक ही काम करेगा, ऐसा नहीं होता ना। अंतिम क्षण तक आप करेंगे, और प्रार्थना यह है कि कॉन्शियस रहूँगा, बेशुद्ध रहूँगा, शुद्धि रहूँगा, कोमा में रहूँगा, फिर भी स्मृति आपकी बनी रहे, ये हमारी प्रार्थना है, उसके लिए हमारा प्रयत्न जारी है। तो वो जो अंतिम समय, लास्ट मोमेंट आपकी स्मृति हो गई ना, तो वो स्मृति की वजह से भी उसके पहले वाला दिन का जो कुछ घंटे का कर्म है वो भी नष्ट हो जाएगा। और क्या भगवान के सामने आएगा? जो भी आपने भगवान की सेवा में कार्य किया है, भक्ति, शुद्ध भक्ति पूर्ण सेवा, वो उसका अकाउंट है ना, वो नष्ट नहीं होता है। कल किया उसका आज में जमा हो गया, परसों क्या किया वो भी जमा हो गया, कोई समय के साथ नष्ट नहीं होता है। कर्म का ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन भक्तिपूर्ण सेवा शाश्वत है। वो एक बार जमा हो गई तो अक्षय खाते में गई, वो रहेगी तो रहेगी या तो मल्टीप्लाई होगी, लेकिन क्षय नहीं होगा उसका, अक्षय खाते में जाएगा वो। तो ये सारा करके क्या करना है? हर रोज देखना है कि हमारे कर्म नष्ट होते जाए, खत्म खत्म खत्म, रोज के रोज। 8 दिन स्नान करेंगे तो 8 दिन के बाद में बहुत गंदगी रहेगी, रोज 3 बार स्नान करेंगे तो हार्डली आपको साबुन लगेगा। देखते हैं ना आप लोग, हमारा रोज का अनुभव है। वैसे हम नित्य भगवान के नाम का स्मरण करेंगे तो नित्य हर क्षण सफाई होती रहेगी, लेकिन जमा क्या रहेगा? भगवान के नाम के आधार पर जो सेवा की है वो स्टॉक जो है आपके साथ ही चल रहा है। एंड में सारे कर्म नष्ट, वो स्टॉक आगे जाएगा एकदम, और वो स्टॉक के देके भगवान आपको उधर से उठाएंगे। ये तो डरना नहीं, कैसा है ना, जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं और वहाँ से निकलने के लिए करना क्या है, पता होना चाहिए। और वो करते समय लक्ष्य तक पहुँचने के बीच में जो भी कुछ हो रहा है उसको सहन करना चाहिए। ठीक है, अभी इधर से भी पानी आ रहा है शरीर में, तो ट्रेन से जा रहे हैं, इधर से पानी गंदा आ रहा है, इधर से गंदी हवा आ रही है, लेकिन जाना छोड़ना नहीं चाहिए, जाते रहो, अपने आप भी साफ करते रहो, ट्रेन छोड़ो मत, ट्रेन में बैठे रहो, चाहे तो खिड़की बंद कर लो, चाहे तो दरवाज़ा बंद कर लो, चाहे तो अगरबत्ती जलाओ, लेकिन जर्नी चालू रखो, सफ़र चालू रखो, तो फिर पहुंच सकते हो। हाँ माइक। नियमित सत्संग करना चाहिए, जिसमें ये बातें कही जाती है। अभी गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज का आप कोई भी प्रवचन सुनो, कोई भी विषय हो, उसमें बोलेंगे ही वो त्रिनादपि सुनी चेना। आपको बोले महाराज इसमें क्या कनेक्शन था इसका, लेकिन वो बोलेंगे आपको, क्योंकि उनको पता है प्रवचन कोई भी हो, विषय कोई भी हो, चर्चा कोई भी हो, ये जब तक नहीं समझ में आएगा वो की हुई चर्चा भी बेकार है, उनको पता है, इसलिए बार बार बोलेंगे। तो सत्संग करते रहिए, आपको रोज ऐसा हैमर 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 होते रहेगा, वो रोज के रोज एवरी डे आपको बार बार ठोक ठोक करके याद किया जाएगा, नंबर बनना है, नंबर बनना है। कठिन है बहुत, इतना आसान नहीं है। अरे इतना बड़ा शरीर लेके घूम रहे क्यों? क्योंकि वो जो बॉस बनने की भावना है ना, इसका ये प्रूफ है, इसका ही प्रूफ है ये। अगर वो सेवक की भावना होती तो ये नष्ट हो जाएगा, इसका अस्तित्व रहेगा, परिणाम नष्ट हो जाएगा अभी, और जब खत्म हो जाएगा तो केवल वही आपको आगे ले जाएगा, नम्रता का स्वभाव। इसलिए मैं भी कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूर्ण नम्र बन गया, लेकिन मुझे भी कहते रहना है, आप लोगों को सुनते रहना है, आप कहते रहेंगे मैं सुनते रहूँगा, गुरुजी बोलते रहेंगे मैं सुनते रहूँगा, ताकि सब लोगों को मिलकर वो करना है, सब लोगों को याद भी देना है, माता जी प्रभु जी नम्र बनना है, छोड़ दो उसको, ज़्यादा दिल में मत लखो। ठेस कहाँ लगती है? ईगो को लगती है, नम्रता को ठेस लगती नहीं कभी भी। नम्र व्यक्ति को नम्रता के ऊपर ठेस लगती नहीं है, नम्र व्यक्ति को भी उसकी जितना ईगो बचा है वहीं पर ठेस लगती है। जहाँ पर भगवान की कृपा को अवरोध है, और भगवान की कृपा को आने के लिए अवरोध एक ही है, अपना ईगो जो रास्ते में खड़ा है, वहाँ पर टकराती है तो भी अपने को तकलीफ होती है, वो नहीं रहता है तो वो आगे चले जाते हैं जहाँ पर आत्मा तक पहुँचना है उसको। आत्मा और कृपा के बीच में वो ईगो खड़ा है, उधर बार बार ठोकरे आ रही है, टूट गया अच्छा है ठोकरे खाकर, तो फिर हमला हमारे पास डायरेक्ट कृपा आएगी, बट लेकिन कोशिश करना है मुझे। और कैसा है ना, अभी मेरे को ये कहना भी आसान है, कोशिश करते रहो करते रहो, पर देखना ये है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो फिर वापस कष्ट होना ही होना है, तो क्या सोचेंगे, चलो अभी मुझे नम्र होने में कष्ट हो रहा है, लेकिन नम्र न होने से जो कष्ट होगा तो बचेगा ना, वो नम्र होने से भी कष्ट हो रहा है, लेकिन नम्र होने से अभी कष्ट होगा आगे के कष्ट मिट जाएंगे, और नम्र नहीं हुआ और वो सुख रखा मैंने तो बहुत सारे कष्ट आपके लिए वेटिंग में हैं, अलग टाइप वाले, सोच के रखो इसके बारे में। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचता है, चलो दोनों तरफ कष्ट है, लेकिन एक कष्ट जो है वो फेवरेबल है, एक कष्ट जो है वो तकलीफ वाला है, कष्ट तो लेना ही मुझे, फिर मैं व्यवहारी बन जाता हूँ, सोचो कि भाई जो अच्छा है हमारे लिए वो ले लेता हूँ, जो बाकी तकलीफ वाला है वो नहीं चाहिए। प्रयास कब होता है, जब आपके मन में उसके मेरे विश्वास है, अगर आपको पूरा श्रद्धा आ गई ना उसके ऊपर, तो फिर आप हिचकिचाएंगे नहीं उस कष्ट को अपनाने के लिए, लेकिन आपको अगर विश्वास नहीं उसके ऊपर, मैं क्यों मांगू उसको माफ़ी, उसको भी समझता है वो भी भक्त है कि नहीं, मैं ही भक्त हूँ क्या, जब तो वो भी करता है तो मैं भी करता हूँ, उसको समझता नहीं क्या, मेरे को खाली बता रहे हो नम्र बनो नम्र बनो। जैसे अभी मैं आपको एक कथा बताता हूँ, हाँ गुरु महाराज के पास एक इशू गया, उसमें कहीं ना कहीं मैं कनेक्टेड था, तो गुरु महाराज ने मुझे बुलाया और बोला आपको जाके उनसे माफ़ी मांगनी है, तो मैंने पूरा बताया महाराज मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं इसके अंदर, मैं मतलब माफ़ी मांगने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा कोई संबंध नहीं है उसके अंदर, और मेरा माफ़ी मांगने का कोई प्रयोजन ही बनता नहीं है, लेकिन गुरु महाराज बता रहे हैं कि उनको लगता है कि आप इसमें अपराधी हो, उनको लगता है आप अपराधी हो, इसलिए आप अगर नम्र बनकर माफ़ी मांगोगे तो आपको जो लाभ ही लाभ है उसको भी लाभ हो जाएगा, और आप अड़के रहोगे तो उसका मन में जो किंतु परंतु है वो वैसे रहेगा। वो आपने बताया, देखो मैं ना आपको ये बता सकता हूँ, उनको ये बता नहीं सकता। ऐसा मेरा आपके ऊपर विश्वास है कि मैं आपको ये बता सकता हूँ, आपसे करवा सकता हूँ, और श्रद्धा है कि आप करोगे। लेकिन वो व्यक्ति उस स्थिति में नहीं है कि मैं कुछ कहूँ और वो सुने और समझे। आप तो समझ रहे हो ना, तो मैं कह रहा हूँ इसलिए करो। तो मुझे पूरा विश्वास था, उनको भी विश्वास था कि ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने फिर भी दंडवत प्रणाम किया और उसमें कल्याण हो गया उस विषय का। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम बिना मतलब के हमको माफ़ी मांगनी पड़ रही है, कोई बात नहीं, झुकने से कभी नुकसान नहीं होता है। आपको झुकने की ज़रूरत नहीं होगी शायद, लेकिन आप झुकते हैं तो लाभ आपका ही होता है। जैसे आप दंडवत किसी आशीर्वाद देने के लिए बुजुर्गों के साथ झुकते हो ना, सबसे पहला बेनिफिट आपका है, क्योंकि झुकते ही आशीर्वाद का हाथ ऊपर आ जाता है। देखो आप, आपके सामने में कोई झुक गया ना, आप आशीर्वाद देने लायक नहीं हो, लेकिन आपको लगता है अरे भला हो आपका, शुभम भवति, क्योंकि वो नेचुरल प्रक्रिया है। झुकने से तुरंत आशीर्वाद निर्माण होता है। कितनी भी मांग गुस्से में हो, चरणों में झुक जाओ, हाँ बस बस बेटा बस बस, झुक झुक जियो, है ना। तो झुकने में कभी नुकसान नहीं है। कि वे तो क्या कहते हैं उसको ना, वो वर्ल्ड इटर्नल ब्रीद वाक्य है, शाश्वत वाक्य है वो। जब भी झुकोगे लाभ ही लाभ पाओगे। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। यस, माइक ले लो। असं का, असा प्रश्न आहे तुमचा। तुम्हाला मी आता उत्तर सांगेन ना, एकदम ध्यानपूर्वक ऐका, मग तुम्हाला कधी असा प्रश्न मनात पडणार नाही। सामान्य जीव असतो ना, तुम्ही याच्या आधी मी एक सांगितली गोष्ट मगाशी, सामान्य जीव एक मनुष्य जन्मामध्ये जे काम करतो त्याच्या परिणामस्वरूप त्याला अनेक जन्म घ्यायला लागतात त्याचा हिशेब पूर्ण करण्याकरता। पण तो ती व्यक्ती जेव्हा भक्त बनते तेव्हा त्याच्या मागल्या जन्मांचा जो हिशोब आहे, या जन्माचा जो हिशोब आहे आणि याच्या याला अनुषंगाने जो अनेक जन्म पुढचे भगवानने लिहून ठेवले आहेत की याला कुत्रा बिल्ली बनायचं आहे वगैरे, ते सगळे रेकॉर्ड भगवंत एकत्र करतात। ज्या क्षणी तुम्ही ठरवता की मी आता तुमचा भक्त बनणार आहे, बस ठरलेलं आहे, शाश्वत निर्णय माझा तो, बदलणारा निर्णय आता मला इतकं कळलेलं आहे की आता मी तुमच्याकडे येणार। जेव्हा आपण तो निर्णय घेतो त्यावेळी मागच्या आताच्या आणि पुढच्या जीवनाच्या जितका फाईल्स आहेत त्या सगळ्या एकत्र येतात, त्या सगळ्यांना भगवंत एकच फाईल बनवतात आणि मग त्यात बघतात की आता भक्त बनलाय ना, मग त्याला ह्या कर्मांची गरज नाही, कट, ह्या जन्मांचं ह्या कर्मांचा वाईट परिणाम द्यायची शिक्षा द्यायची गरज नाही। हां, ह्या कर्मांची शिक्षा दिली तर त्याला प्युरिफिकेशन करता आवश्यक आहे। काय चांगलं आहे काय वाईट आहे भगवंत वरून बघणार, आणि ती काटछाट जी आहे ना ती फक्त भगवंत करू शकतात। ती काटछाट कुठचीही देवता, यमराज, इंद्र, चंद्र, वरुण, पृथ्वी कोणीही नाही करू शकत। ते फक्त काय करणार, सांगितलेलं काम करणार, ही ही कर्म आहेत याची फळं यांना द्या। ते काही विचार नाही करणार, जास्त आहेत कमी आहेत अन्याय आहे चांगलं आहे असं काय बघणार नाही। एक फाईल दिली आहे, तो कसा असतो जेलर, असा जेलर त्याला कडे फाईल येते, हा कैदी आहे 6 महिने शिक्षा आहे, हे त्याला द्यायचं आहे दंड, तो काय म्हणणार, चलो टिक 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 चालू, एक्झिक्युशन ती कसे नर्स कसे नर्स ती ठरवते का कुठची गोळी द्यायची कुठचं इंजेक्शन देऊ नाही तसं दिलेलं असतं सकाळी दुपारी संध्याकाळी मी तर टिकटिक करते दोनला दिलं तीनला दिलं डॉक्टर साहेब मी हे का दिलं असं विचारत नाही जे दिलं आहे ते करते तसं कुठच्याही देवतांना ते बदलायचा अधिकार नाही आहे भगवंत स्वतः आपल्या अधिकारात जसं डॉक्टर आपल्या अधिकारात ते दवा बदली करू शकतो हे योग्य नाही चेंज दुपारी बदली करून टाका आणि मग जी फाईल उरते ना काटछाट केल्यानंतर ती ह्या जन्माच्या पूर्वीच्या फाईलपेक्षा खूप मोठी असते कळलंच मला कारण ते इकडचं पण आणलेलं आहे इकडचं पण आणलेलं आहे आणि ते एक मोठी फाईल बनलेली आहे त्यात खूप काटछाट केली आहे परंतु ती ओरिजिनल जी ह्या जन्माची फाईल होती त्याच्यावरून ती खूप मोठी आहे म्हणून त्या भक्तांना खूप कष्ट 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 होताना दिसतात का कारण भगवंतांना त्यांना पुढच्या अनेक जन्मामध्ये होणारे कष्ट एकाच वेळी संपवायचे असतात कळलं मला बिलकुल कर्मावर मात करता येते 100% सर्व धर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम भजे म्हणजे काय मी अहम त्वम सर्व पापे भियो मी सगळं तुमचं नष्ट करेन विश्वास ठेव अर्जुन मा शुचहा भिऊ नकोस श्रद्धा ठेव मी काय म्हणतो त्यावरती तर भक्ती एवढी शक्तिशाली आहे की ती सर्व कर्मांवरती मात करून शून्य बनू शकते ती शून्य पण ती भक्ती करतोय का आपण प्रॉब्लेम तिथे आहे आणि केली पण तर आपण काय करतो कर्ममिश्र म्हणजे भक्ती करतोय पण भगवान थोडा प्रमोशन पण द्या चांगलं जेवण पण द्या त्याला मोठं घर पण असायला पाहिजे 6 वर्ष आली जप करतोय अजून प्रमोशन नाही अजून नवीन घर नाही कर्पमिश्र हां आणि ज्ञानमिश्र म्हणजे अरे भगवान इतना सब कर रहा हूं मोक्ष तो दे दो कब मोक्ष दोगे आप वो ज्ञान मिश्र ऐसे बहुत सारे मिश्री चलते रहती है वो कभी अहय तो की अप्रतिता त्यात हेतु पण नाही आणि काही खंड पण नाही ते जेव्हा बनेल ना तेव्हा ती भक्ती जी आहे ती सगळं सपाट करून टाकणार तिथं काय उरणारच नाही काय तिथे सो आपला प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की भक्तांना पुन्हा 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 कष्ट का होत असतात कारण त्यांचं सगळा हिशोब आणि जो त्यांचा जो काही आहे काय म्हणतात त्याला अकाउंट ते आत्ताच संपवायचं आहे भगवंतांना याच जन्मातच म्हणून ते जास्त असेल पण तुम्हाला समजा सांगितलं प्रभूजी एक तुम्हाला चॉईस आहे एक तर 5 जन्म घ्या तुम्ही आणि हे कर्म वाटून घ्या आणि हळूहळू भोगा नाहीतर एकाच वेळी तुम्हाला देतो आणि ह्या जन्माच्या एंडला तुम्ही माझ्याकडे पोचाल म्हणजे काय म्हणणार एवढे कष्ट कोण भोगणार यार ठीक आहे भगवंत देऊन टाका 5 जन्माला एवढं जमणार नाही त्याला काय म्हणणार मूर्ख मनुष्य म्हणणार बुद्धिमान काय म्हणणार भगवंता नक्कीच ह्या जन्माच्या एंडला सगळं संपेल ना शुअर ना भगवंता मग ठीक आहे मला एक प्रार्थना आहे की तुम्ही जे काय द्याल ना भरघोस दुःख जे काय म्हणजे टेस्ट द्याल ना ते सहन करायची शक्ती द्या तुम्ही द्या आम्हाला ताकद पण द्या आम्ही धन्यवाद म्हणून धन्य सहन करू पण एक काम करा याच्याच एंडला आम्हाला तुम्ही घेऊन जा भगवंता पुन्हा नाही आम्हाला यायचं आहे इथे असं आहे सगळ्या भक्तांच्या जीवनात जास्त कष्ट असतातच हे गृहीत धरा तुम्ही मला काय वाटणार अरे आलो होतो दुःख मुक्त होण्याकरता आणि बघतो तर काय बाबा आधी बरा होतो आता काय चाललंय कळत नाही आधी बरा होतो मी असं वाटेल तुम्हाला सगळ्यांचा आमचा अनुभव हाच आहे आधी सुखी होतो खूप आता एवढे कष्ट वाढलेत काय विचारू नका आणि नेमकं भक्ती सुरू केलं तर सुरू झाले सगळे ते सगळ्यांचं तुम्ही जीवन मागचं असं जेव्हा सुरू केलं ना जप असं बरोबर पडताळून पहा तुम्हाला कळेल आधी शांत होतं सगळं नंतर ते वादळ सुरू झालेलं आहे गलबल टर्ब्युलन्स पण ते चांगलं आहे प्रभूजी खूप चांगलं आहे आपल्या होमिओपॅथीमध्ये ना एक होमिओपॅथी पद्धतीमध्ये असं एक तत्व आहे की ते तुम्हाला औषध द्यायला सुरू केलं ना की तुमचा आजार बळावणार मला वाटणार का नाही बरवायला गेलो मी काल ताप 101 होता तुमचे औषध खाल्ल्या 104 झाला बरोबर पण 104च होता काय तुमचं औषध करतं काय डॉक्टर बोलणार आमची पद्धती अशी आहे की आमचं औषध खाल्लं की रोग असा बळावतो आणि मग नष्ट होतो तर ते काय म्हणतात थोडं तो कालावधी जो आहे ना बळावणारा कालावधी तो सहन करा औषध घेत राहा, श्रद्धा पण ठेवा, मग तो आपोआप मुळापासून नष्ट होणार. ॲलोपॅथी काय करते, आजार दापते. तुम्हाला काय ताप नको पाहिजे ना, हे घ्या क्लोसिन घ्या, ताप बंद, पण आजार नष्ट होत नाही. पण काही पद्धती अशा आहेत त्या समूळ आजार नष्ट करतात. तसं भगवंताची भक्ती जी आहे ना, तुमचा समूळ भवरोग नष्ट करून टाकतो, की जेणेकरून माझा भक्त पुन्हा इथे नको येऊ. देवता लोक काय म्हणतात, चला माझा या यज्ञ केला, तुम्ही काय पूजा केली, चला हे आशीर्वाद घ्या, धनसंपत्ती येईल, तुम्हाला आरोग्य मिळेल, तुम्हाला मुलं होतील, तुम्हाला राज्य मिळेल, सगळं मिळेल. परंतु जन्म मृत्यूपासून मुक्ती मिळणार नाही, कारण तो अधिकार आमच्याकडे नाही. भगवंत काय म्हणणार, की राजा बनू दे, संपत्ती मिळू दे, याचा काय मतलब नाही, तो माझ्याकडे येऊ दे, त्याचा मी काय करणार आहे ते बघता भगवंत. भगवंत हे बघणार नाही की तो म्हणतो भगवंता मला राजा बनवा, भगवंता मला श्रीमंत बनवा, भगवंता मला सुंदर बनवा, तुला गप रे तू, तुला मला माझ्याकडे घेऊन यायचं आहे, नाही का. आपण जातो ना मुलाला घेऊन जातो, तर कुठेतरी चाललो आहे कामाला, पण मुलगा म्हणतो बाबा मला फुगा पाहिजे, बाबा मला ते पाहिजे, म्हणलं गप जरा मायाबरोबर चल. मग तिकडे गेल्यावर कळतं की तिथे खूप फुगे आहेत, ते खूप खेळणे आहेत, रस्त्यावरचे एक एकच होती. मग त्याला कळलं की बाबाने आपलं राखलं रस्त्यामध्ये, चांगलं केलं, कारण ते आपल्याला ओरडून त्या ठिकाणी घेऊन गेले ज्या ठिकाणी सुखच सुख आहेत. त्यामुळे विश्वास ठेवा, आणि हे पण ध्यानात ठेवा, तुमच्या जीवनात जे काही कष्ट येतील ना, त्या कष्ट भोगताना हा विचार करा की हे काटछाट केलेलं कष्ट आहे. हे जर मूळ कष्ट असतं तर ते किती प्रमाणात असतं, ते भगवंताने ऑलरेडी फाईल आपल्याकडे घेऊन ते कटछाट करून आपल्याला दिलं आहे, ते आपल्याला असंही होत आहे. जर ओरिजिनल काटछाट न केलेलं दुःख आलं असतं तर आपली काय अवस्था झाली असती. म्हणून भगवंताचे भक्त जे असतात ते मोठ्या कष्टातसुद्धा धन्यवाद देऊ शकतात, तर त्यांना माहिती असतं की हे जे मोठं दुःख होत आहे ना, ते पण काटछाट केलेलं छोटं दुःख आहे. याच्यावर विश्वास ठेवा या गोष्टीवरती, मग तुम्हाला कळेल की जीवन किती छान आहे आपलं. खूप होत आहे पण ते पण काटछाट केलेलं आहे, हे आपलं भाग्य आहे. हरे कृष्णा. ठीक आहे, आणखीन काय प्रश्न कोणाचे? म्हणजे कसं आहे ना याचं बघा, आता इथे पण काही मुलं MBBS करता प्रयत्न करतायत, काही लोक MBBS नंतर PG करण्याकरता प्रयत्न करतायत, है ना. त्यांना ना दिवस रात्र अभ्यास करावा लागतो. असं नाही कॉलेजमध्ये गेले काही विद्यार्थी तेच परीक्षेत प्रयत्न करतायत, त्यांच्याबरोबर गेले की खूप वाटते की आपण पण मस्त अभ्यास करावा, घरी आलं की पब्लिक TV बघते आपल्या वाटते आपण पण TV बघावा. अशा पद्धतीने नाही होत. आमच्यासमोर आमच्या शेजारीमध्ये एक मुलगा आहे, भक्तांचा मुलगा आहे. प्रभूजी, छोटी बहीण आपली आपली मजा करत असते, बॅडमिंटन खेळत असते, काय काय करत असते, आई बाबा आपल्या कामाला जात असतात. तो मुलगा सकाळी 5 स्वतःच उठतो, आईला उठवतो, 6:45 डबा घेऊन क्लासला जातो, संध्याकाळी 4 घरी येतो, थोडा विश्रांती घेतो, 11 अभ्यास करतो. त्याला काही देणेकडे नाही आहे, कुटुंबात काय चाललं आहे, समोर काय चाललं आहे, कोण यात्रेला चाललं आहे, कोण कुठे चाललं आहे, त्याचं एकच ध्येय आहे की त्याला त्याच्यामध्ये मेडिकलमध्ये ॲडमिशन पाहिजे. तसा निश्चय पाहिजे प्रभूजी. तुम्ही इथे जे ऐकता ना ते तुम्ही त्याप्रमाणे मनात घ्यायला पाहिजे, निश्चय स्वरूपामध्ये. इथे आलं की त्या हवेत आलं की वा असं वाटतं, त्या गेलं की त्या हवेत आलं की वा ती हवा चांगली वाटते, अशा नाही भक्ती नाही होत. जे आपल्याला पटलं आहे ना त्याचा निश्चय कोण करणार? तुमच्याकरता मी करणार काय? समजा मी आता काय काय बोललो त्याचा निश्चय कोण करणार त्याबद्दल? तुम्हीच करणार. तुमच्याकरता निश्चय मी नाही करू शकत, माझ्याकरता करू शकतो, पण तुमच्याकरता निश्चय तुम्हीच करत असतो. त्यामुळे इथे बसताना ऐकताना सगळं सोडून एकाग्र होऊन ऐका, असं असं ऐका असं, आणि ते असं आत्मसात करा की घरी गेल्यावर पण ते तसंच राहिलं पाहिजे. आणि इथे ऐकताना पण निर्णय करा, भगवंता मी जे ऐकतोय, जो माझा विश्वास इथे निर्माण होतोय तो टिकून राहा, भगवंता टिकून ठेवा प्लीज. बाहेर झाल्यानंतर तो कमजोर होऊ नये, माझा निश्चय घरच्या वातावरणामुळे. भगवंता तुमच्या सत्संगात जे मी ऐकतोय ते कृपा करून हृदयाच्या आतल्या कोण्यामध्ये ठासून भरवा, असाच प्रार्थना करा तुम्ही. तुमच्या मनात खरा खरा असा प्रश्न असेल ना, अरे इथे आला की मी एकदम भारावून जातो, घरी गेले की तिथून भारावून जातो, हा माझा प्रॉब्लेम आहे, असं तुम्हाला खरोखर वाटत असेल ना तर इथेच प्रार्थना करा की त्याने मी भारावून जाऊ नये, ह्यानेच भारावून जावं, अशी प्रार्थना करा. मुलगा कसा म्हणतो, म्हणाला भगवंताला, भगवंता रोज दिवाळी असू दे, रोज फटाके मिळू देत फोडायला, रोज करंजी खायला मिळू देत. तू कशी प्रार्थना करत असतो भगवंता? म्हणजे आपण प्रार्थना करायची की तुमचा निश्चय, तुमच्या विषयीचा निश्चय जो आहे तो असाच राहावा. तुमचा काय प्रश्न आहे? तुझे उत्तर तुम्हाला मिळालं ना, उत्तर मिळालं ना. प्रार्थना करणं फार आवश्यक आहे. तुझं जे आपल्याला हवं ते जर सहज मिळत नसेल आणि ते मिळायला खूप कष्ट असतील तर त्याच्याकरता प्रार्थना करणं खूप आवश्यक, मग ते सहज होऊ शकतं आणि मिळू पण शकतं. येस, मग हे बंदच करून टाकाय काय? ना रहेगा बास ना बजेगी बासुरी, है ना. ठाकूर भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराजांनी याच्यावर उत्तर दिलं आहे की ब्रह्मचारी बनून ब्रह्मचारी आश्रमात राहणं खूप कठीण आहे, तरीही ब्रह्मचारी बनून ब्रह्मचारी आश्रमात राहणं खूप आवश्यक आहे असं सांगितलं त्यांनी. तसं भक्तांच्या सहवासात राहून भक्ती करणं कठीण आहे कारण अपराधाची भीती असते, तरी पण भक्तांच्या सहवासात राहून भक्ती करणं खूप आवश्यक आहे. कठीण आहे पण आवश्यक आहे. MBBS करणं सोपं नाही, तरी पण त्या मुलांच्या मध्ये राहून अभ्यास करून ते पूर्ण करणं आवश्यक आहे. म्हणून ते कष्टमय असं म्हणून ते सोडून पळून जाणं आवश्यक नाही. कारण का तुम्हाला वाटतं की अरे मैं अपराध करणे की जगात छोड के ही चला गया तो अपराध से मुक्त हो गया, नाही, वो अपराध बाहेर भी करेगा जाके, दुनिया में भी करेगा. शेवटी काय असतं ना, ती प्रवृत्ती असते आपली, जी रोग म्हणून आपल्यामध्ये असते अपराधी प्रवृत्ती, तर ती अपराधी प्रवृत्ती इथे जर प्रकट झाली तर ते तुम्हाला ऐकायला मिळेल, काहीतरी चांगला बोध ऐकायला मिळेल, तुम्ही ते हळूहळू सोडून द्याल. बाहेर अपराध केलात ना फक्त टीट फॉर टॅट, जसाच तसे उत्तर मिळते, काही बोध मिळत नाही. तुम्ही मारले कानाखाली, तुम्हाला दोन कानाखाली पडणार बस. ते अवॉइड कसं करायचं तुम्हाला कोण सांगणार नाही, पण इथे झालं ना काही तुम्हाला गायडन्स मिळेल. आणि हळूहळू का होईना, प्रयत्नपूर्वक का होईना, तुम्ही त्या प्रवृत्तीमधून मुक्त व्हाल. म्हणून भक्तांमध्येच राहा, अपराध केलात 10 वेळा दंडवत घाला त्यांना आणि क्षमा मागा, त्यांच्याचकडेच राहा तुम्ही परत परत, त्यांना सोडून बाहेर नका जाऊ. इथे राहिलो तर दंडवत घ्यायला लागतो, त्याच्यात बाहेर गेलं बरं, नो दंडवत रिक्वायर्ड. त्यांच्यातच राहा, 10 वेळा दंडवत घाला, क्षमा मागा, आशीर्वाद घ्या, त्यांच्यामध्येच राहून कंटिन्यू करा. मग त्या कृतीमुळे भगवंत आपल्याला त्या अपराधी प्रवृत्तीपासून मुक्त करतील. अपराधापासून मुक्त करायचं ज्ञान कुठे मिळतं? बाहेर मिळतं, इथेच मिळतं. बाहेरच्या जगात तुम्हाला कोणी शिकवणार नाही, तुमच्या कामाच्या ठिकाणी, व्यवसायाच्या ठिकाणी, मॉलमध्ये, दुकानामध्ये तुम्हाला कोणी शिकणार नाही अपराध नका करू, अपराध करणं आवश्यक आहे, न म्हणजे आवश्यक आहे भक्ताला अपराध न करणं, कोणीही शिकवणार नाही. फक्त भक्तांच्या संगतीमध्ये हे जाणलं जातं पहिल्यांदा आणि मग शिकवलं जातं कसं करू नये ते. म्हणून कितीही वाटलं कष्टमय तरीसुद्धा भक्तांचा संघ हा कल्याणकारीच असतो असं आहे. आहे ना, अपराध केला की सफरिंग होणारच, अपराध केला की सफरिंग होणारच निश्चित रूपाने. कधी कधी अपराध असा असतो की सफरिंग नाही होत पण एक भयंकर गोष्ट होते. ऐकायचे तुम्हाला, अपराध नाही होत त्याचं बघा. समजा आता यांचा अपराध केला, उद्या मला लूजमोशन झाले, अरे हां त्या माताजींचा अपराध केला मग आज मला ते दस्त लागले, तर आपल्याला कळू शकतं. पण कधी कधी काय होतं, काहीच होणार नाही, पण काय होणार, तुम्ही जपच नाही करणार. काल सकाळी उठलो होतो दामोदरमध्ये 5 वाजता, आज 8 पर्यंत मला उठल्यानंतर माळा घ्यायची इच्छाच नाही. तो जास्त भयंकर परिणाम आहे अपराधाचा. आणि तो होता कामा नाही. जेव्हा आपला जप होत नसतो ना, अंदाज वाटतंय रे चांगले 8 दिवस जप केला, आज का नाही झाला? विचार करा, काल परवा कुठे कोणाचा अपराध केला काय भक्ताचा? किंवा आणखीन एक त्याचं लक्षण आहे, सांगू काय लक्षण सांगू? नाही, गंभीर विषय म्हणून विचारतो परमिशन. कधी कधी अचानक ना काम भावना अशी उफाळून येते, काही कारण नसताना अशी एकदम सेक्स डिझायर अशी एकदम अशी वाट लावून टाकते पूर्ण, तो पण भक्तांच्या अपराधाचा परिणाम आहे. कारण नाम जप कधी नाही होत, ज्या मनामध्ये अशी आग असे ना इच्छांची, त्यावेळी नाम जप नाही होत. तर ती आग निर्माण करून आपण जप नाही करत, तर या ना त्या प्रकारे माया आपला अशी धोका देते की आपण नाम नाही करत. अचानक उफाळणारी काम वासना आणि अचानक वाटायचं की आज जपच करू नये, सुट्टी, कॅज्युअल लीव फ्रॉम जपा, म्हणजे याचा अर्थ अपराध निश्चित झाला आहे. शोधून काढा आणि भगवंताकडे प्रार्थना करा, मला कळू दे माझा अपराध काय झाला आहे, मला क्षमा मागायची आहे. भगवंत मला बरोबर दाखवणार, बघा बघा आत्म्यांचा अपराध केला होता काल. मग त्यांच्याकडे जाऊन नम्रतेने माफी मागा. ते नाही 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 म्हणतील, पण तुम्ही सांगा मला क्षमा करा तुम्ही. आणि क्षमा जेव्हा प्राप्त होते ना हृदयापासून, ताबडतोब जप स्वागला होतो, हे पण खरी गोष्ट. त्याने जर मनापासून तुम्हाला क्षमा केली, वरवरून नाही, त्यांनी जर मनापासून क्षमा केली तर लगेच तुम्हाला फरक जाणवणार, लगेचच. भक्त एक साधी मशीन नाही, साधी व्यक्ती नाही आहे, भक्त भगवंताची भक्त आहे. आणि भगवंताला खूप प्रिय व्यक्ती आहे ती, साधारण व्यक्ती नाही. दिसायला काळा गुंजर काय असेल, गरीब असेल, पण भगवंतासमोर ते फार मूल्यवान वस्तू आहे. त्यामुळे तुम्ही बाकी कुठे अपराध करा, भक्तांचा केला की भगवंत पटके देणारच आपल्याला. म्हणून भक्तांना कधी असं जोखू नका, हा काळा आहे, हा गोरा आहे, हा श्रीमंत आहे, हा गरीब आहे, मोठा आहे, हा छोटा आहे, हा इम्पॉर्टंट आहे, हा इम्पॉर्टंट नाही आहे, असा कधीही करू नका विचार. कारण भक्त ह्या मापदंडामध्ये बसूच शकत नाहीत. भक्तांचा एकच मापदंड असतो, भगवंताची प्रीती, त्यांचं कनेक्शन. मेल्यानंतर सुद्धा आपण जेव्हा उभं राहतो ना भगवंतासमोर, तिथे कुठचं कार्ड दाखवतो? मी करोडपती होतो, मी इतका मोठा बिझनेसमॅन होतो, मी ह्या पदावरती होतो, मी मुख्यमंत्री होतो, मी संत्री होतो, मंत्री होतो. किती भक्ती केली ते कार्ड दाखवा, ते चालतंय इथे. बाकी कुठचंही कार्ड चालत नाही, फेकून द्या ते कार्ड. पासपोर्ट नका दाखवू इथे, काय उपयोग नाही त्याचा. तिथे फक्त एकच चालतं कार्ड असेल तर, आणि त्याच्यामध्ये किती काय लिहिलं आहे त्याच्यावरती चालतं, बाकी कुठचंही कार्ड चालत नाही. है ना, वो एक गाना था पिक्चर का, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहाँ हाथी ना घोड़ा है, वहाँ पैदल जाना है. का अर्थ काय त्याचा, अर्थ काय त्याचा? कि तुमचा जो बडेजाव आहे ना, हाथी घोड़ा, वो उधर मत दिखाओ, कुछ काम में आने वाला नहीं उधर, कोई भी हो. इसलिए जो भी नाटक करना है इधर करो, उधर कुछ नाटक चलने वाला नहीं है, उधर जो है वैसा हिसाब चलेगा, वॉट एवर इट इज वैसा ही चलेगा. उसके लिए तैयारी करना है अपने को. इसलिए साधु संत कहते हैं कि डोंट वेस्ट योर टाइम, अमीर बनने में, बहुत सारा बड़े जाओ करने में ज़्यादा टाइम मत करो, अपना कर्तव्य करो, जितना आता है उसमें ठीक है. नहीं बना करोड़पति क्या फर्क पड़ता है, अगर भगवान को अच्छा लगा मैं तो गरीब से होते हुए भगवान मुझे ले जाएंगे अपने पास, और भगवान को नहीं अच्छा लगा तो मैं करोड़पति होगा तो भी भगवान बोलेंगे रहे इधर, तू दूसरी बार भी आ जा और अब्जोपति बन जा, तो क्या फायदा है उसका. इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम इन ये. नहीं अभी देखो रिटायर हो गया फिर भी अभी तक बंगला नहीं बना, ठीक है ना, क्या है, खाना पीना तो मिल रहा है ना, भजन करने का टाइम तो मिल रहा है ना, वो अवसर तो प्राप्त है ना, नहीं बंगला बना ठीक है ना, क्या फर्क पड़ा. कहते मेरे नसीब में जमीन ही नहीं है, कितना भी कोशिश करो जमीन खरीद सकता नहीं है, तो जमीन नहीं खरीदेगा तो बंगला कैसे बांधेगा. नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है, भगवान का नाम मिलने का लेने का मौका मिल रहा है और वो लेते रहूँगा तो भगवान को प्राप्त करने की संधि उपलब्ध है, और क्या चाहिए हमको, क्या चाहिए. मृत्यु के समय पे ना सब कुछ होता ना वो इररिलेवेंट बन जाता है, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, बिना मतलब का बन जाता है. अभी कल मैं देख रहा था, वो बेटी जिस घर की थी, एक बड़ा 2 मंजिल का बिल्डिंग है उनका, गुरुकुल है, इतने बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जब मृत्यु हो रही है तो उसका कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? कि दो बेडरूम का फ्लैट था कि दो मंजिल की बिल्डिंग थी उनके गांव में जमीन थी, अरे मृत्यु के सामने वो कुछ कुछ हिसाब किताब ही नहीं उसका, यूजलेस है सब कुछ। वो भगवान को क्या लग रहा है आपके बारे में, वही ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है उस समय। भगवान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं बस, तो भगवान को अपने बारे में क्या सोचने को लगाना है ये अभी समय दिया आपको। वो क्या सोच रहा है, उसने ऐसा क्यों बोला, वो ऐसे क्यों देख रहा है मुझे, ये सब सोचने का समय नहीं है। ये समय उसी के लिए है कि भगवान को मेरे बारे में कैसा अनुकूल सोचने के लिए लगाना है मुझे, उनको अच्छा लगना चाहिए वैसे करना है। वही विचार मन में रहेगा तो भगवान देखते हैं क्या ये बड़ा सिंसियर डिवोटी है, ये इसको मैं ले जाऊँगा। और फिर कोई पहले गया बाद में गया बचपन में गया वो सब है ना, बड़ा लंबा हिसाब किताब है, तो कभी समझ में नहीं आएगा, कितना भी माता फोड़ी करो नहीं समझ में आएगा। इतना ही सोचो जो भगवान कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। वो नेपाल में जब 8 डिवोटी गुजर गए थे ना, पता है आपको, एक छोटा हवाई जहाज टकरा गया था और 8 डिवोटी एक्चुअली जलकर भस्म हो गए थे, ऐसे नहीं मरे थे हार्ट अटैक से, जलकर मतलब कोयला हो गया था पूरा उनका, दिखते भी नहीं थे, वो दिखे भी नहीं किसी को, तो महाराज आए थे तो उन्होंने बोला कि हमको लगता है कि अरे इतना भगवान ने भक्तों के लिए बुरा क्यों किया, लेकिन अगर उसके बाद में सीधे भगवान उनको अपने पास ले जाते होंगे तो वो अच्छा है कि बुरा है। समझो आपको मुझे कहा जाता है कि प्रभु जी वो मुक्तिनाथ की फ्लाइट ले लो, उधर आपका क्रैश में मृत्यु होने वाला है, लेकिन उसके बाद तुरंत आपको भगवत धाम प्रवेश मिलने वाला है, तो आप उस फ्लाइट का टिकट बुक करेंगे नहीं करेंगे? नहीं रे बाबा, वो पत्थर को कौन टक्कर के मरेगा। नहीं, अगर एक झटके में सब हिसाब किताब खत्म हो गया, भगवान की प्राप्ति होती होगी, तो बोला तुरंत निकालो, फुल होने के पहले निकालो। ये सब पर्पज़ है ना, आपको अगर पता है तो आप लोग नहीं हिचकिचाएंगे उसके लिए, वी आर ऑलरेडी रेडी फॉर दैट। बस गारंटी दो कि बस ऊपर से वापस नीचे नहीं आना पड़ेगा ना, सीधे आपके धाम में ना। हाँ ठीक है, फाइन, ठीक है। तो कैसा अच्छा है और कैसा कल्याण है और कैसा कल्याण भगवान करने वाले हैं ये किसी को पता नहीं होता है, भगवान को पता होता है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो, वो जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। कैसे अच्छा कर रहे हैं अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अच्छा कर रहे हैं ये श्रद्धा होगी तो अच्छा ही होगा। हो सकता है आपके समझ में भी आएगा, लेकिन समझो आपका अच्छा हो रहा है और आपके समझ में नहीं आ रहा है, क्या नुकसान है आपका? अच्छा हो रहा है आपको समझ में आ रहा है, लेकिन तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे, अच्छा हो रहा है ना, बस होने दो, समझ में तो क्या फर्क पड़ता है, आया तो अच्छा है। और कोई प्रश्न है किसी का? माइक क्या जोर से बोलो, चालू है? हाँ हाँ, आ जाओ।
तो एक्चुअली आप अभी ग्रस्त है, तो ग्रस्त लोग जो है तो कर्तव्य के अपना कर्तव्य करना पड़ता है ग्रस्त को, तो कर्तव्य के नाम से समझो सुविधा भी प्राप्त करने की कोशिश चालू रहती है इधर, फिर ये बैलेंस कैसा करना है, ये भी करना है।
उसको एक ही इंग्लिश में उत्तर देता है, डू द नीडफुल, जरूरत जो है वो करो, उसके लिए ही मत करते रहो, जरूरत के लिए करो। आपका एकदम एकदम ऐसा एकदम क्या कहते हैं उसको, ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, समझो आपको पैर में तकलीफ है, जोड़ों में तकलीफ है और आपके पास इंडियन टॉयलेट है, तो आप क्या करेंगे, उसको निकाल के इंग्लिश लगा देंगे? आप क्या कर रहे हो, जो ज़रूरत है वो कर रहे हो, बैठ के नहीं होता है तो कमोड पर बैठ के सुविधा है। अभी मुझे दुख की तकलीफ है तो मैं क्या करूँगा, जाना ही है तो छतरी लेकर निकलूँगा, नहीं तो अवॉइड करूँगा, शाम को जाऊँगा अगर मुमकिन है तो, लेकिन जाना ही है तो फिर मैं छतरी लेके जाऊँगा, या तो वो चाइनीज़ एक पंखा आता है ना, ऐसा इधर रखते हैं ना, ऐसा हवा आती है उससे, वो चला के जाऊँगा, थोड़ा सा सुविधा, या तो एसी गाड़ी में बैठ के जाऊँगा। वो है डू द नीडफुल, काम होना चाहिए। उसी प्रकार से जो आवश्यक है ना, एकदम जीवनावश्यक, उसको करने में कोई गुनाह नहीं है, उसको आप अपने आनंद के लिए बना रहे हो समझो, तो फिर प्रॉब्लम है। अब आपको पीठ का दर्द है तो आप ऑर्थोपेडिक बेड लेते हो, बहुत महंगा होता है वो, लग्जरी नहीं है वो, आपको ज़रूरत है, लेकिन बिना ज़रूरत के आप ऐसा बहुत महंगा वाला बेड खरीद रहे हो, खाली आनंद आ रहा है इसलिए, तो डिफरेंट है। तो ज़रूरत के लिए करना, ये कैसे ना बोलते ना कि आप आनुकूल्य से संकल्प हो, उसमें आता ही जो आपके भक्ति के लिए ज़रूरत है इसलिए आपको वो कर रहे हैं, और जो भक्ति के लिए आवश्यक नहीं है प्रतिकूल्य से वर्जनम, वो भी करना है। तो हर समय आपको समझते में आता नहीं होगा कि भाई ये ज़रूरत है कि नहीं है, तो अपने काउंसलर से पूछो, शिक्षा गुरु से पूछो कि प्रभु जी ऐसा ऐसा करने जा रहा हूँ मैं, ये मेरे भक्ति के लिए अनुकूल होगा क्या? तो कभी कभी आपको लगता होगा कि ये उत्तर मिलना चाहिए, मेरे को लगता है मेरे लिए अच्छा उत्तर है, और गुरु आपका जो शिक्षा गुरु है वो दूसरा ही कुछ बता रहा है आपको कि नहीं ये आपके लिए सही नहीं है, तो वो भी आप स्वीकार करो और गाइडेंस से, क्योंकि आप जा रहे हो पूछने के लिए तो भगवान आपको उत्तर देंगे उनके मुख से, अगर आप सिंसियर हो तो उनको पूछो वो आपको आंसर देंगे, उसको स्वीकार करो और फॉलो करो। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला समझो, आपके मन में कुछ प्रश्न है और अभी गुरु महाराज तो हर आदमी को मिलते नहीं है प्रश्न डायरेक्ट पूछने के लिए, तो अपने पास बहुत सारे डिवोटीज हैं, सीनियर डिवोटीज है, काउंसलर है, शिक्षा गुरु है, बहुत सारे लोग हैं। आपको जब पूछना होगा ना कोई प्रश्न, तो भगवान को जाके बोलना कि मैं ना नरोत्तम प्रभु के पास जा रहा हूँ ये प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए, आप कृपया उनके मुँह से उत्तर देना, और ये श्रद्धा के साथ में उनके पास जाना, भगवान उनके मुख से आपको उनका उत्तर देंगे। वो कभी वो भी नहीं है और भी कोई तो भी है, तो प्रार्थना करने का मैं इसको पूछने जा रहा हूँ, भगवान मुझे कृपया उसके मुख से उत्तर देना, मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, आपको मिलेगा उत्तर। इतनी प्रामाणिकता हम लोग कर सकते हैं ना प्रभु जी, अगर हमें दुविधा है कि सही है कि नहीं है, तो भगवान आपको उत्तर देंगे। भगवान क्या है ना, अपनी भावना को देखते हैं, हर समय भगवान को आपके सामने आकर उत्तर देने की जरूरत है क्या? भगवान चींटी से भी आपको उत्तर दे सकते हैं, भगवान किससे भी आपको उत्तर दे सकते हैं, भगवान को जरूरत नहीं कि खुद ही आके, अरे आएगा आप खुद बोलेगा तो मानूंगा, जरूरत नहीं है। आपके मन की भावना है तो भगवान आपको किसी से मुंह से भी आपको उत्तर दे सकते हैं। आपको सिंसियरली प्रार्थना करनी चाहिए और ज़रूर करो, क्योंकि तो बहुत बार ऐसे मन में दुविधा होती है कि ये करूँ कि नहीं करूँ, ये करूँ कि नहीं करूँ, ठीक है, तो ज़रूरी है वो करो प्रार्थना करके। ओके, जय जय श्री राधे श्याम।